أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابھی دو روز تک رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو بھٹی کی طرح قرار دیا جس میں زنگ آلود لوہا جب لوٹایا جاتا ہے تو اس کا زنگ اس کی آلودگیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں اور وہ صاف شفاف ہو کر دوبارہ باہر نکلتا ہے. اسی طرح وقت کے لحاظ سے رمضان کا ظرف بھی بھٹی کا حکم رکھتا ہے اور رمضان کے لفظ میں بھی گرمی اور شولوں کی تیزی اور بھسم کر دینے والے معنی پائے جاتے ہیں. بس ان معنوں میں رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں ہماری آلودگیوں ہماری گزشتہ غفلتوں کو جلانے کا کام دے گا. اگر ہم اپنے آپ کو اس مہینے کے حضور پیش کر دیں اور مہینے کے حضور پیش کرنے میں ایک یہ بھی مضمون شامل ہے کہ اپنے مختلف پہلوؤں کو بدل بدل کر اس مہینے کے سامنے رکھیں. جس طرح ایک انسان جب آگ پر کوئی چیز بھونتا ہے تو اس کو اس کے پہلو بدلتا رہتا ہے، ورنہ ایک پہلو جو آگ کے دوسری طرف ہو وہ ٹھنڈا رہ جاتا ہے. بس رمضان مبارک میں بھی انسان کو اپنی بدیاں تلاش کر کے مختلف پہلوؤں سے رمضان کے حضور پیش کرنی چاہیے، اور اس پہلو سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے انسان اس مہینے میں ہمیشہ کروٹیں بدلتا ہوا مختلف پہلوؤں سے خدا سے التجائیں کرتا ہوا مختلف زاویہ نظر سے اپنی کمزوریوں کا مطالعہ کرتا ہوا مسلسل ایک نئی کیفیت کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا. یعنی رمضان مبارک میں یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی کیفیت سے داخل ہوں اور اسی کیفیت سے باہر آئیں، بلکہ ہر روز ایک نیا مضمون آپ پر ظاہر ہوتا چلا جائے گا. ہر روز رمضان مبارک کی نئی برکتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہیں گی، اور اللہ تعالی کے فضل سے اگر اس طرح آپ جستجو اور محنت سے اس مہینے سے گزریں گے تو ایک نیا وجود پا کر نکلیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جب نکل جاتے ہیں تو پھر واپسی کا دور بھی شروع ہو جایا کرتا ہے، اور اسی رمضان مبارک میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جس مقام سے چلے تھے اگلے رمضان مبارک میں داخل ہوتے وقت اس مقام پر نہ پہنچ چکے ہوں، اور بلکہ خطرہ ہے کہ اس سے نیچے نہ گر چکے ہوں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان रमजान मुबारक में से नेक नीयत के साथ गुजरता है, जिद्दोजहद के इरादे लेकर दाखिल होता है, फिर उसे अपने इरादों को अमल में ढालने की तौफीक भी मिलती है और बहुत कुछ वो रमजान से पाता है, बहुत कुछ अपनी बदियां खोकर इस महीने से बाहर आता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो फिर असर नौ वही गफलतों का दौर शुरू हो जाता है, वही सुस्तियां जिनके नतीजे में जगह जगह गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत में बाज दफा ये खतरा होता है कि आइंदा रमजान के वक्त इंसान अपने आप को उससे बदतर हालत में पाए जिस हालत में गुज़श्ता रमजान में दाखिल हुआ था। बस ये जो रमजान के दो किनारे हैं इनके मज़मून को हमेशा पेश नजर रखना चाहिए। दाखिल होने वाला किनारा है, उसमें हम गुनाहों और बदामालियों से बोझल होकर दाखिल होते हैं, बहुत से दाग हमारे चेहरे पर लगे हुए होते हैं, बहुत सी कसाफतें हमारे जिस्म को गंदा किए हुए होती हैं। हम सफाई की नीयत से और पाक नीयत से रमजान मुबारक में दाखिल होते हैं, नहा धोकर साफ सुथरे होकर बाहर निकलते हैं और फिर अचानक ये महसूस होता है कि अब मेहनतों का दौर खत्म हुआ। ईद के साथ ही ये धोखा लग जाता है कि ये ईद नेकियों की ईद नहीं बल्कि गुनाहों की जिंदगी की तरफ लौटने की ईद है और बाशऊर तौर पर इंसान ये नहीं करता, लेकिन लाशोरी तौर पर दुनिया के अक्सर इंसानों के साथ यही कुछ होता है और वो मालूम भी नहीं कर सकते कि हम क्यों खुश हैं और ये खुशी कहीं खैर के पर्दे में छुपा हुआ शर तो नहीं। बस जो बातें मैं आपके सामने खोल कर रख रहा हूं इस मज़मून पर जब आप गौर करेंगे तो ज्यादा मुहतात हो जाएंगे। फिर दूसरी शक्ल यह है कि जो शख्स हर साल अपने आप को पहले से बदतर हालत में पाए या वैसी ही हालत में पाए वो खतरे से बाहर नहीं है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हजरत हदीयत जल्ला शानहू ने जो ये फरमाया वल आखिरत खैरुल्लक मिनलूला कि तेरी वल आखिरत खैरुल्लक मिनलूला तेरी आखिरत पहले से बेहतर है, ये बहुत वसी मज़मून है, इसका मैं बारहा जिक्र कर चुका हूं लेकिन ये एक ना खत्म होने वाला मज़मून है, हर अच्छी सूरत हाल पर इसका इतलाक बात होता है। बस इस नजर से अपना मुतालिया करना चाहिए कि हमारा बाद का आने वाला रमजान गुजरे हुए रमजान से बेहतर रहा कि नहीं और हमें उससे बेहतर हालत में पाने वाला बना कि नहीं और उससे बेहतर हालत में छोड़ने वाला बना कि नहीं। ये तीन नुक्ता निगाह हैं जिनसे अपने हालात पर गौर करना चाहिए और रमजान से अपने ताल्लुकात को समझना चाहिए। इस रमजान में खसूसियत से आलम इस्लाम के लिए दुआ की जरूरत है। बहुत से अमूर मैं गुज़श्ता खुतबात में आपके सामने खोल कर रख चुका हूं, बहुत से ऐसे खतरात हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनकी तफसील में जाने का वक्त नहीं था बल्कि बाज का तो मैं जिक्र भी नहीं कर सका, लेकिन बाज इशारों में उनके मुतालिक बातें हो चुकी हैं। चूंकि मैं अब इस मज़मून को खत्म कर चुका हूं इसलिए दोबारा इस मज़मून को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूं कि आइंदा चंद माह के अंदर मुसलमानों के मुतालिक ही नहीं बल्कि दुनिया की तकदीर के मुतालिक बल ऐसे खौफनाक फैसले भी हो सकते हैं जिनके नतीजे में सारी सदी दुखों से चूर हो जाएगी और नहायत ही दर्दनाक जमाने का मुंह इंसान देखेगा, और कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं जिनके नतीजे में शैतान की इज्तिमाई कुव्वत के साथ जो आखिरी भरपूर हमला होने वाला है उसका दिफा करने की इंसान को तौफीक मिल जाए, खसूसियत से मुसलमानों को, क्योंकि अगर मुसलमानों ने उसका दिफा कर लिया तो तमाम बनी नौ इंसान मुसलमानों के दिफा के पीछे हिफाजत में आ जाएंगे और मुसलमानों के दिफा के लिए की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अहमदियों पर आयद होती है। और ये बात जो मैं कह रहा हूं इसकी बिना हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर है जिससे पता चलता है कि आखिरी दौर में जब बलाएं अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगी उस वक्त मसीह मौत की दुआएं हैं जो इस्लाम के दुश्मनों से इस्लाम को और दुनिया को बचाएंगी। बस इस पहलू से ये रमजान ऐन वक्त पर आया है, यानी जब बलाएं खुल कर सामने आ चुकी हैं और कुछ उनके पसपर्दा मख्फी इरादे हैं जो जाहिर इरादों से भी बदतर हैं, लेकिन हमें अंदाजा हो चुका है कि इस बला के पीछे पीछे और भी बहुत सी बलाएं आने वाली हैं। उस वक्त हम रमजान मुबारक में दाखिल हो रहे हैं और दुआओं का खास मौका हमें अता होगा। बस इस रमजान मुबारक को खसूसियत के साथ बनी नौ इंसान के दिफा का रमजान बना दें, मुसलमानों के दिफा का रमजान बना दें, इंसानियत के दिफा का रमजान बना दें और इस्लाम के दिफा का रमजान बना दें। और दुआ ये करें कि हम अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते जो खुद तूने पैदा किए हैं और जिनकी खबर तूने अज़दखुस सादिकीन हजरत अकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें 1400 साल पहले अता फरमा दी थी। बस हम कमजोर हैं, निहत्ते हैं, बेताकत हैं और हमारे मुकाबले पर जो ताकतें हैं उनको तूने ही इतनी दुनियावी अजमत बख्श दी है कि हम उनके सामने बिल्कुल बेबस हैं। बस तेरी ही तरफ हम झुकते हैं, तेरे तुझसे ही रुजू करते हैं, तुझसे ही आजाना दुआएं करते हैं कि उन पेशगोइयों के दूसरे हिस्सों को भी सच्चा कर दिखा, यानी मसीह मऊद और आपकी जमात की दुआओं की बरकत से ये दुनिया की अजीम ताकतें अपने ऐसे दुनियावी खजाइन के जरिए जिनके मुकाबले पर हमें एक दमड़ी की भी हैसियत हासिल नहीं, दुनिया के ईमान खरीद रही हैं। तू ही है जो इस दुनियावी दौलत के शर से लोगों को बचा, ये अपने ऐसे अजीम हथियारों के जरिए जो पहाड़ों की तरह बुलंद हैं, जिनकी ढेरियां पहाड़ों के बराबर हैं और जिनके अंदर हलाकत की ऐसी ताकतें हैं कि सिर्फ अगर एटम बम के को ही इस्तेमाल किया जाए, यानी एटम बम के उन जखायर को इस्तेमाल किया जाए जो अमरीका और रूस में है, तो साइंसदान बताते हैं कि ये सारी दुनिया बीसियों मरतबा हलाक की जा सकती है और उनमें इतनी हलाकत की ताकत है कि सिर्फ दुनिया के में बसने वाले इंसान हलाक नहीं होंगे बल्कि जिंदगी का निशान तक इस दुनिया से मिट सकता है। बस ये दुआ करनी चाहिए कि ऐ खुदा, दौलतें भी तूने इन बदबख्तों को इतनी दे दी कि उनके मुकाबले पर सारे आलम इस्लाम की मजमू दौलत भी कोई हैसियत नहीं रखती और अहमदी तो फिर एक बहुत ही गरीब जमात हैं, हथियार भी ऐसे अता फरमा दिए कि जिनमें से सिर्फ एक हथियार के एक हिस्से को इस्तेमाल करके ये दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों को सफ़ा हस्ती से मिटाने की अहलियत रखते हैं और मुकाबले पर हमें खड़ा कर दिया है जिनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन साथ ही हमें खुशखबरी भी दी और ये खुशखबरी दी कि तुम्हारी दुआओं को मैं सुनूंगा और उन दुआओं की बरकत से मैं बिलआखिर इन अजीम कौमों को पारा पारा कर दूंगा। और ये जिस तरह नमक से बर्फ पिघलती है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा ये खींचा है कि बर्फ की तरह तमाम दज्जाली ताकतें जो इंसानियत और हक के दुश्मन हैं वो इस तरह पिघल कर गायब हो जाएंगी जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं था। तो दुआओं की ताकत आपके पास है, इस अजमत को पहचाने और ये अजमत इनकिसारी में है। इस बात को कभी न भूलें। दुनिया की ताकतों और मजहबी ताकतों में यह बुनियादी फर्क है। दुनिया की ताकतें तकब्बुर पर मुनहसर होती हैं और मजहबी ताकतें इज्जत पर मुनहसर होती हैं। बस दुआ में उतनी ज्यादा रफत पैदा होगी जितना आप खुदा के हजूर झुकेंगे, दुआ में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होगी जितना आप बेताकती महसूस करेंगे। आपकी बेबसी के नतीजे में दुआओं को कुव्वतें अता होंगी। बस इस मजमून को खूब अच्छी तरह समझते हुए इस रमजान से हत्तल मकदूर फायदा उठाएं और आजजी और इंकिसारी के साथ बेबसी के आलम में खुदा के हजूर बिछ जाएं कि ऐ खुदा इन बड़ी बड़ी ताकतों के शर के इरादों को बातिल कर दे, जो इनकी खैर है वो बाकी रख। हमें किसी कौम से मिनहैसुल कौम नफरत की इजाजत नहीं है, ना नफरत हमारे खमीर में दाखिल फरमाई गई है। इसलिए हम दुनिया की जाहिल कौमों की तरह मगरबी ताकतों के खिलाफ ना दुआएं कर सकते हैं ना नफरत के जज्बे रख सकते हैं। हम शर से मुतनफिर हैं और अपनी दुआओं को खसूसियत के साथ शर के खिलाफ रखें। कौमी और असबी रंग में बाज कौमों की हलाकत की दुआएं ना करें। यह दुआ करें कि ऐ खुदा, जो मशरिक में तेरे आजिज बंदे हैं उनके साथ भी कोई शर वाबस्ता है, उनके शर को भी मिटा दे, और जो मगरिब की अजीम ताकतें हैं जो सारी दुनिया पर गालिब हैं इनके शर को भी मिटा दे। इनका शर इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि ताकतवर का शर हमेशा ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। ताकतवर का शर ज्यादा फैलने की सलाहियत रखता है, ताकतवर का शर दुनिया की खैर को मिटा देने की सलाहियत रखता है। बस हम ये नहीं कहते कि दूसरी दुनिया की कौमों में शर नहीं है, हम ये नहीं कहते कि मशरिक मुअज्ज़ज़ है और मगरिब ज़लील है। हम ये कहते हैं कि इस वक्त मगरिब में जो शर फैलाने की ताकत है वैसी ताकत कभी तारीख में किसी कौम को अता नहीं हुई, और ये बात हजरत अकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि आखिर जमाने में जब दज्जाल जाहिर होगा तो उसका इतना शर दुनिया में फैलेगा और उसे शर फैलाने की इतनी ताकत नसीब होगी कि जब से दुनिया बनी है खुदा के तमाम अंबिया को दज्जाल के शर से डराया गया और उनको बताया गया कि आइंदा जमाने में एक इतनी बड़ी शर फैलाने वाली कौम भी दुनिया में जाहिर होगी। बस किसी असबियत के जज्बे की बिना पर नहीं, किसी कौमी या नस्ली तफरीक की बिना पर नहीं, बल्कि खालिसतन इन पेशगोइयों के मजमून को पेश नजर रखते हुए सही निशाने की दुआ करें। वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी दुआओं में आपकी नीयतों का शर शामिल हो चुका हो, कौमी असबियतों का शर शामिल हो चुका हो, नस्ली तफावक का शर शामिल हो चुका हो, और कई किस्म के ऐसे शर हैं जो मख्फी तौर पर इंसान की दुआओं में लग जाते हैं और उसके अंदर जहर घोल देते हैं, वो मकबूल दुआएं नहीं रहती। बस इस तफसील से आपको समझाने की इसलिए जरूरत पेश आई है कि महज रोने और गिरिया और जारी से दुआएं कबूल नहीं हुआ करती। दुआओं को अपनी मकबूलियत के लिए एक खास पाकीजगी और सेहत चाहिए, और जिस रंग में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी और दुआएं सिखाई वही रंग इख्तियार करें। अपने नफ्स को अपने शर से भी साफ रखें और दूसरे हर किस्म के शुरूर से भी पाक करें और खालिसतन लिल्लाह दुआ करें, ना कि कौमी नफरतों की बिना पर। तो फिर मैं यकीन रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी और ये अजीम तारीखी दौर जिसमें हम दाखिल हुए हैं इसका पल्ला बिल आखिर इंशाअल्लाह इस्लाम के हक में होगा, और इस्लाम के गालिब आने की तकदीर तो बहरहाल मुकद्दर ही है, यानी नाम मिटने वाली अटल तकदीर है, मगर हमारी दुआ और कोशिश यही होनी चाहिए कि इस तकदीर को हम अपनी आंखों के सामने पूरा होते देख लें। इसके बाद अब मैं वापस उसी मज़मून की तरफ आता हूं जिसका मैंने जिक्र किया था, यानी सूरह फातिहा के जरिए नमाज में लज़्ज़त हासिल करना और सूरह फातिहा के जरिए खुदा ताला की सिफात की सैर करना और खुदा ताला से एक ज़ाती ताल्लुक पैदा करना। ये मज़मून तो लामुतनाही मज़मून है, लेकिन एक दो और खुतबात इस मज़मून पर इसलिए दूंगा ताकि हर इंसान अपने अपने ज़ौक के मुताबिक इस्तेफादा करते हुए पहले से बेहतर सेहतमंद नमाजें पढ़ सके, पहले से बेहतर लज़्ज़त वाली नमाजें पढ़ सके और अपनी नमाजों से ज्यादा फायदा उठा सके। मैंने बयान किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में जो के साथ जो सिफात बयान हुई हैं, चार बुनियादी सिफात हैं और तमाम सिफात बारी ताला के लिए ये मां का हुक्म रखती हैं और हर सिफत इनमें से किसी न किसी के साथ से फूटी है या खास ताल्लुक रखती है। इस मज़मून पर गौर करते हुए एक मरतबा मैंने दुआ के जरिए मदद चाही कि अल्लाह ताला इसको मुझ पर और खोल दे ताकि कोई ऐसा नुक्ता मैं जमात को समझा सकूं जिससे हर शख्स बड़ी आसानी के साथ फायदा उठा सके। वरना रहमानियत, रहीमियत, मालिकियत वगैरह के ऊपर इनफिरादी तौर पर गौर करके सिफात बारी ताला से इनका दीगर सिफात बारी ताला से इनका ताल्लुक तलाश करना एक मुश्किल और दकीक मज़मून है जो हर किसी को जिस पर दस्तरस नहीं, हर शख्स इससे फायदा नहीं उठा सकता। चुनांचे अल्लाह ताला ने मुझे ये बात समझा दी जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि तमाम सिफात बारी ताला का ताल्लुक सिर्फ रबूबियत से नहीं, सिर्फ रहीमियत से नहीं, रहमानियत से नहीं, मालिकियत से नहीं, बल्कि सूरह फातिहा के इस पहले बयान से है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रबूबियत से नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान के साथ है और रहीम के साथ है और मालिक के साथ है इसी हम्द की जोड़ के साथ। क्योंकि जब मैंने इस पर गौर किया तो मैं हैरान रह गया कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मज़मून में वो तमाम सिफात भी बयान हो गई जो हमें मालूम है और वो तमाम सिफात भी इसके अंदर शामिल हो गई जो हमें मालूम नहीं मगर हमसे ज्यादा आलिम लोगों को मालूम है या इस जमाने को मालूम नहीं और आइंदा जमाने को मालूम होंगी। इस मज़मून को कुछ मजीद खोल कर मैं बयान करता हूं ताकि फिर आप गौर के जरिए इससे मजीद इस्तेफादा कर सकें। रब के बहुत से मानी हैं। अगर पैदा करने वाला और परवरिश करने वाला और तरक्की देने वाला और मोहब्बत से ख्याल रखने वाला और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने वाला और कमजोरियों को दूर करने वाला और गैरों के शर से बचाने वाला और हिफाजत करने वाला, ये माने मज़मून सामने रखें तो बहुत से ऐसे लोग इंसानों में से भी हैं और बहुत से ऐसे वजूद जानवरों में से भी हैं जो अपने अपने दायरे में रब कहला सकते हैं। माएं हैं जो अपने बच्चों के लिए रब बन जाती हैं, ख्वाह वो इंसानी माएं हों या जानवरों की दुनिया की माएं हों, ख्वाह वो अदना जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली माएं हों या आला जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली माएं हों, उन सब में रबूबियत का मज़मून पाया जाता है। लेकिन उसके साथ हम ये नहीं कह सकते कि वो तमाम सिफात की हामिल हैं। बस महज रबूबियत के नतीजे में तमाम सिफात पर हावी होने का मज़मून पैदा नहीं होता और जबरदस्ती करके कोई इंसान कहना चाहे कि रब का माना है हर सिफत की मां, हर सिफत से मां वाला ताल्लुक रखने वाला, तो यह दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि ये ऐसा तमाम जहानों का ऐसा रब है जिसकी रुबूबियत में तमाम हम्द शामिल है और हम्द के सिवा कुछ भी नहीं, यानी इसकी रुबूबियत के जितने भी जलवे जाहिर हुए हैं हर जलवे पर इंसान कह सकता है कि इस जलवा अफरोज होने वाले रब में तमाम सिफात हसना पाई जाती हैं और हम्द पाई जाती है। पस रबूबियत ऐसी जिसमें नक्स कोई न रहा हो और रबूबियत ऐसी जो अपनी हम्द की वजह से बाज और सिफात की मुतकाजी हो जाए। इसकी मिसाल एक मिसाल देता हूं, बेशुमार मिसालें हैं। आप एक टेलीविजन का सेट देख लें, उस टेलीविजन के सेट में आप मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली तस्वीरें भी देख सकते हैं, एक मुल्क में दिखाई जाने वाली तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये मुनसिर है इस बात पर कि वो सेट किस ताकत का है और किस किस्म का है। फिर अच्छी तस्वीरें भी देख सकते हैं, बुरी भी, शोर वाली भी, कम शोर वाली भी, शोर से साफ भी, और रंग भी मुख्तलिफ देख सकते हैं। और फिर अपनी मर्जी से जब चाहें फौरन उसका उस टेलीविजन का ताल्लुक जिस मुल्क से चाहें फौरन कर लें। बार दफा ये कि घर में बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल के जरिए जो चाहें उसके साथ जो चाहें उससे करवा लें। तो टेलीविजन का एक सेट है जिसकी ये आम सिफात आपको मालूम है कि बड़ी अच्छी सिफात है, लेकिन बहुत कम लोग ये गौर करते हैं कि टेलीविजन बनाने के लिए कितने इल्म की जरूरत है और कितने मुख्तलिफ किस्म के उलूम की जरूरत है और सनत व हिरफत में किस किस चीज पर कमाल की जरूरत है, और उसके हर पुर्जे के लिए कितने वसी इंसानी इल्म के जखीरे की जरूरत है। यानी इंसानी इल्म तो तरक्की करता चला जाता है वक्त के साथ साथ, लेकिन महज एक वक्त का इल्म काफी नहीं हुआ करता। तरक्की करने के बाद उस इल्म की सारी तारीख का इल्म होना जरूरी है, और उसका जो मजमूआ है वो है जो बाकी गुज़श्ता उलूम की के मराहिल पर फजीलत रखता है। बस एक टेलीविजन में अगर कोई सिलिकॉन चिप इस्तेमाल हुआ है जिसके अंदर बहुत से पैगाम भर दिए गए हैं ताकि टेलीविजन उसके जरिए से ज्यादा अच्छा काम करे, तो सिलिकॉन चिप को पैदा करने के लिए जितनी सलाहियतों की जरूरत है, जितने उलूम की जरूरत है, वो सैकड़ों साल के उलूम का मजमूआ है, और सनत व हिरफत के लिहाज से जितनी महारत की जरूरत है वो भी एक लंबे दौर के मजमूए का नाम है। और फिर एक वक्त में एक इंसान के बस की बात नहीं, एक वक्त के मुख्तलिफ इंसानों, मुख्तलिफ कौमों के इंसानों की इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। बस एक टेलीविजन बनाने वाला एक शख्स तो हो नहीं सकता, लेकिन वो मजमूआ इंसानों का जिसने टेलीविजन बनाया उसके पीछे और बहुत से इंसानों के मजमूए कितार दर कितार आपको दिखाई देंगे, और उन सब के उलूम के और उनकी सब की उन सब की महारतों का आखिरी खुलासा उस टेलीविजन की शक्ल में आप देख रहे हैं जो जिसके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि ये इस वक्त मौजूद टेलीविजन में से दुनिया का बेहतरीन टेलीविजन है। जितना अच्छा टेलीविजन होगा उतने ही ज्यादा साहिब इल्म लोगों की जरूरत होगी, उतना ही ज्यादा साहिब फन लोगों की जरूरत होगी, उतना ही ज्यादा वसाइल पर इख्तियार रखने की जरूरत होगी, उतना ही ज्यादा सरमाए की जरूरत होगी। गर्जी के एक टेलीविजन के साथ मुतल्लक एक इंसानों का हजूम दिखाई देगा, बल्कि लाखों करोड़ों इंसान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में कुछ न कुछ इसकी तामीर में हिस्सा ले लिया है, खैर वो मर चुके हैं, और इतने उलूम इसके लिए दरकार हैं कि आप उनको उनकी आम इंसान उनकी फहरिस्त भी नहीं पेश कर सकता, फहरिस्त उसके सामने पड़ी जाए तो वो समझ नहीं सकता कि ये क्या बातें हो रही हैं। अब शर्त यह है कि वो टेलीविजन कामिल हो और उसको देखकर ये हम्द का मजमून इंसान के जहन में उभरे। बस जितनी ज्यादा उस टेलीविजन के ऊपर आप ये कह सकते हो कि क्या कहने हैं इस टेलीविजन के, तमाम हम्द इसके लिए है, उतनी ही ज्यादा उसके खालिक के लिए या तमाम वो वजूद जो जिन्होंने उसकी खल्क में हिस्सा लिया है उन सब के लिए हम्द का मजमून साबित आएगा। लेकिन टेलीविजन में जो हम्द जमा हुई है वो किसी एक शख्स के लिए नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने बयान किया है, मुख्तलिफ जमाने में फैले हुए उलूम में मेहनतें करने वाले बेशुमार इंसान हैं जिन्होंने उसको बनाने में हिस्सा लिया है, और इस वक्त इस दुनिया में भी जिस कारखाने में वो बना, टेलीविजन की सारी जरूरतें उस कारखाने में पूरी नहीं हुई बल्कि मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कारखानों से पुर्जे हासिल किए गए, कुछ टेक्नोलॉजी आरियतन ली गई, कोई और मदद हासिल की गई। तो तारीफ इसकी टेलीविजन में तो मुश्तमिल हुई लेकिन बनाने वालों के लिहाज से मुंतशिर हो गई और बेशुमार इंसानों के हिस्से में आई और मुख्तलिफ जमानों के हिस्से में आई। खुदा ताला के मुतल्लिक जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो उसकी तखलीक की हर सनत की हर खूबी बहुत से उलूम का तकाजा कर रही है, बहुत सी सिफात का तकाजा कर रही है, और खुदा की सनत पर वाकईतन हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाकईतन हर तारीफ के लायक वो जात है जिसने ये सब कुछ बनाया है। बस सिर्फ उस वक्त की तारीफ नहीं बल्कि उन तमाम जमानों की तारीफ जिन जमानों की तरफ अल आलमीन का लफ्ज इशारा कर रहा है, और उस तमाम कायनात में मौजूद तमाम कायनात के हर जर्रे में मौजूद सिफात की तारीफ जिनकी तरफ लफ्ज आलमीन अल आलमीन इशारे कर रहा है, ये मुश्तमिल होकर फिर बिखरती नहीं बल्कि एक जात में इकट्ठी हो जाती है, और वो जात अल्लाह है। तो अगर आप सिर्फ एक जानवर को अपने पेश नजर रख लें और उसकी तखलीक में जो मुख्तलिफ किस्म के उसके तखलीक के मुख्तलिफ मराहिल में जितने मुख्तलिफ किस्म के उलूम की जरूरत पेश आ सकती है, जितने मुख्तलिफ सिफात की जरूरत पेश आ सकती है, उन सिफात के बगैर वो चीज बन नहीं सकती। और अगर हर वो चीज जिस पर आप नजर डालें और गहरी नजर डालें वो काबिले तारीफ दिखाई दे तो उसके बनाने वाले की हर सिफत काबिले तारीफ हो जाएगी, क्योंकि वो वजूद उन तमाम सिफात का एक आखिरी मजहर है, यानी उन तमाम सिफात की जलवागरी का आखिरी सूरत में जाहिर होने वाला मंजर है जो आपको दिखाई दे रहा है। बस खुदा ताला के लिए जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो दुनिया के हर मुशाहदे में आपको खुदा ताला की एक सिफत की बजाय बीसियों बल्कि सैकड़ों बल्कि जितना आपका इल्म बढ़ता चला जाएगा उतनी ही ज्यादा सिफात दिखाई देने लगेंगी, और हर सिफत का मंबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नजर आएगा। इस मजमून पर जब मैंने गौर किया तो यूं कहना चाहिए कि बिल्कुल अकल हैरान शिशद रह गई। यूं लगता था कि आलम हैरत ही में इंसान गर्क हो गया है, किसी जर्रे कायनात के किसी जर्रे में आप डूब कर देखें तो पहले एक खुदा दिखाई देगा, फिर उस एक खुदा के मुख्तलिफ जलवे दिखाई देंगे और उसकी सिफात बढ़ती रहेंगी, मगर मरकज हमेशा वही एक जात रहेगी। इंतिशार सिफात का है, जात का नहीं, और उस जात से ताल्लुक रखने वाली सारी सिफात हैं। और इस मजमून को समझने की चाबी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में है, यानी उस रब की तमाम, उस रब को हर सिफत लायक और जेब है जिसने तमाम जहानों को पैदा किया और तमाम जहानों की परवरिश की। बस अल आलमीन का हर जर्रा खुदा की तरफ इशारे कर रहा है, और एक जात की तरफ इशारा करने के बावजूद उसकी तमाम सिफात की तरफ भी इशारे कर रहा है। यह वो पहलू है जिस पहलू से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुदा ताला का जुमला या बयान वाकईतन बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी तसन्नो के खुदा ताला की तमाम सिफात की तरफ उंगलियां उठा रहा है। लेकिन इस जमन में एक एहतियात की भी जरूरत है। यह है कि कुरान करीम में जिस रंग में हम्द का मजमून बयान हुआ है उसका मुतालिया करें और यह देखें, गौर से यह बात देखें कि जहां जहां भी कुरान करीम ने हम्द का लफ्ज इस्तेमाल किया है वहां खुदा की सिफात को समझने की खिड़कियां खोली गई हैं, और हर खिड़की जात के अलग जलवे दिखा रही है और इस मजमून को खोलती चली जाती है। बस बजाय इसके कि अपने ज़ौकी नुक्तों के जरिए आप इस मजमून को समझने की कोशिश करें, कुरान करीम ने जो खुद खिड़कियां खोली हैं, जो रोजन हमारे सामने रख दिए हैं, उनसे खुदा ताला की सिफात का मुआयना करें तो किसी किस्म की गलती नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि खुदा जालिम नहीं है, उसके बावजूद सजा का मजमून मिलता है। रब्बुल आलमीन रहमान रहीम मालिक का जिक्र है, गजबनाक खुदा का कोई जिक्र नहीं, उसके बावजूद सूरह फातिहा खत्म होने से पेशतर ही हमें मग़दूब अलैहिम का मज़मून नजर आ जाता है, तो फिर इनका आपस में क्या ताल्लुक है? इन सब का ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से है, और ये मज़मून आपको कुरान करीम की मदद से समझ आएगा। इसलिए जब कुरान करीम का मुतालिया करें, खसूसियत के साथ जहां तस्बीह का मजमून हो और हम्द का मजमून बयान हो, वहां गौर करें और ठहरें, और फिर आप देखें कि उस खिड़की से आपको और क्या कुछ दिखाई देता है, तो वहां आपको बहुत सी सिफात बारी ताला दिखाई देने लगेंगी। इसकी एक दो मिसालें मैंने मजमून खोलने की खातिर चुनी हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, फक्त दाबिन कौम लजीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व कुतिया दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, वो कौमें जिन्होंने जुल्म किए उनको जड़ों से उखेर फेंक दिया गया। फल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन खुदा को हर हम्द ज़ेबा है, हर हम्द उसी की है, उसी का हक है कि उसकी तारीफ की जाए। अगर जुल्म करने वाले की जड़ें न काट दी जाएं, तो खुदा ताला की सिफात हसना के हर जलवे की जड़ें काटी जाएंगी और दुनिया से हुस्न नापैद हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसके साथ बयान करके फरमा दिया कि जब हम कहते हैं रब्बुल आलमीन को हर हम्द वाजिब है, हर हम्द उसी का हक है, उसी को ज़ेबा है, उसी की शान है, तो इसका मतलब यह है कि वो निगरान भी है अपनी चीजों का, और ऐसी चीजों को जो बाज खूबियों को खत्म करने की सलाहियत रखती हैं, ऐसी चीजों को जो हुस्न को नापैद करने की सलाहियत रखती हैं, जो बदी को फैलाने की ताकत रखती हैं, उनको नापैद करने का काम भी रब्बुल आलमीन का है और उसी को ज़ेबा है, और उसके लिए वाजिब है कि ऐसा करे। बस सिफात बारी ताला खा वो गजब की सिफात हो और नाराजगी की सिफात हो या जाहरन भी रहम और शफकत की सिफात हो, दर हकीकत में रहमत और शफकत ही की सिफात है और अबूदियत ही की सिफात है। एक और मिसाल इसकी है, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ کہ رعد اس کی حمد کر رہی ہے، ان بجلی کے کڑکے جو آپ بادلوں میں دیکھتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اور ملائکہ بھی حمد کر رہے ہیں مگر اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے۔ اب اگر آپ بجلی کو دیکھیں تو ایک سادہ انسان جس کو دنیا کا کوئی بھی علم نہیں ہے وہ بھی اس سے مروض ضرور ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ہیبتناک جلوہ ہوتا ہے بعض دفعہ بجلی کے کڑکنے کا کہ بڑے سے بڑے انسان کا پتا پانی ہو جائے اور دل لرزنے لگتا ہے۔ اگر واقعی ایسے طوفان میں انسان گھر جائے جس کو سائنسی اصطلاح میں بعض خاص مختلف نام رکھے گئے ہیں مگر اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، بعض طوفان ایسے خوفناک برقی طاقتوں پر مشتمل ہوتے ہیں کہ آنن فانن وہ بڑے بڑے شہروں کو بھسم کر سکتے ہیں، اور ایک ایٹم بم کی طاقت سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کا تعلق خوف سے بھی ہے۔ چنانچہ ایک سادہ پہلی نظر میں جب آپ دیکھتے ہیں طوفان کو اور بجلی کو، خصوصا بجلی کے کڑکوں کو، تو آپ کا دل خائف ہو جاتا ہے اور خدا کی ہم خوف کی وجہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مضمون تو سمجھ آ گیا، خوف اس بات کا کہ یہ بجلی خیر چھوڑ جائے اور اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے سے تعلق رکھنے والے نیک وجود ہیں ان کو ملائکہ کے نام سے موصوم فرمایا گیا، ملائکہ کے طور پر ان کا ذکر کیا گیا، وہ بجلی کو دیکھ کر حمد اس بات کی کرتے ہیں کہ اے خدا سب طاقتیں تجھ کو ہیں، بدی سے شر بھی نکال سکتا ہے، شر سے بدی بھی پیدا کر سکتا ہے، بادل بظاہر رحمت کا پانی لے کے آئے ہیں، ان کے ساتھ بجلی کے کڑکے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ان بجلی کے کڑکوں سے بھی تو خیر پیدا کر سکتا ہے، بس ہم تیرے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے، تیرے حضور تذلل اختیار کرتے ہوئے تیری حمد کے گیت گاتے ہیں، ہمیں ہر چیز میں تیرا حسن دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں خیفت کے ساتھ حسن کے مضمون کو باندھ دیا گیا، یعنی بجلی کا خوف صرف نہیں ہے، بجلی کے خوف سے جو پر جب غور ہوا تو پتہ لگا کہ اس کے اندر بہت سے حسن چھپے ہوئے ہیں، بہت سی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ مضمون اس طرح ظاہر ہوتا ہے غور کرنے کے بعد کہ جب ہم کہتے ہیں خدا کی تخلیق میں ہر چیز میں حمد ہی حمد ہے، تو بجلی سے پہلے خوف پیدا ہوا اور انسان ڈر گیا اور لرزنے لگا، پھر مزید غور کیا تو اس کو پتا چلا کہ خدا محض ڈرانے والی کی باتیں تو نہیں کیا کرتا، محض ہلاکت پیدا کرنے والی چیزیں تو نہیں پیدا کیا کرتا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اس کے اندر ضرور کوئی چھپی ہوئی خیر ہے، اور اس کی خیر اس کے ظاہری شر پر یقین غالب ہے۔ اس مضمون کو خواب و تفصیل سے نہ بھی سمجھ رہا ہو، لیکن اگر الحمدللہ رب العالمین کے مضمون کو سمجھتا ہے تو لازماً اس کے دل میں بجلی کے کڑکوں کو دیکھ کر بھی خوف کے بعد حمد کا مضمون پیدا ہوگا، اور من جملہ اس حقیقت کا اعتراف کرے گا کہ خدا کے ہر جلوے میں حسن ہے، خواب و جلوہ بظاہر ایک نہایت ہی خوفناک منظر پیدا کر رہا ہو، ایک دل ڈرانے والا اور ہال پیدا کرنے والا جلوہ دکھائی دیتا ہو، اس کے اندر ہم ضرور ہیں۔ اب آپ یقین غور کریں، وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے وہ بجلی کے مضمون پر غور کریں تو ان کی حمد نسبتاً زیادہ حمد کی مستحق حمد ہوگی، ये मजमून जरा बयान करना मुश्किल था, इसलिए मुझे तलाश करने में वक्त लगा। हम तो हर हालत में खुदा ही को वाजिब है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन किस हद तक हमें इल्म है कि वो हम्द का मुस्तहिक है, ये मजमून उसकी हम्द में मजीद वसत पैदा कर देता है। बस बिजली को देखने वाला एक सादा लाजमीदार या एक बच्चा भी कुछ न कुछ उससे मरूब होकर खुदा की हम्द के गीत गा सकता है, इन्हीं मानों में गा सकता है कि अच्छा और कुछ नहीं तो या खुदा तू ही मालिक है इस बिजली का, मुझे बचा ले और यही मेरी हम्द है। लेकिन जितना ज्यादा इल्म बढ़ेगा उतना ज्यादा बिजली से ताल्लुक रखने वाला हम्द का मजमून भी फैलता चला जाएगा। अब दुनिया के साइंसदानों ने जो बिजली पर गौर किया है तो एक बात बड़ी कती है जो आम लोगों को मालूम नहीं कि बिजली के बगैर पानी बरस ही नहीं सकता। बस एक सादा लॉ बेइल्म आदमी की हम्द भी अपनी तौफीक के मुताबिक चूंकि हम्द के जज्बे से बयान की गई है इसलिए खुदा को मकबूल होगी, लेकिन उसकी हम्द में वो लज्जत नहीं पैदा हो सकती जो लज्जत उस मजमून का इल्म रखने वाले की हम्द में होगी अगर उसको खुदा से ताल्लुक हो। ये जो पानी बुखारात बनकर आसमान पर चला जाता है, अगर बिजली न होती तो ये कभी दोबारा वापस पानी बनकर जमीन पर न आता। ये बिजली के कड़के हैं जो पानी के बारीक जर्रात को मुश्तमे कर देते हैं और भारी बना देते हैं और फिर वो पानी वदक की तरह नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे बिजली से इंसान मर जाते हैं, इसलिए मरते हैं कि उनके खून में जो लटके हुए जर्रात हैं बिजली के गुजरने से वो मुश्तमे होकर क्लॉक्स बन जाते हैं और तभी बिजली लगे हुए इंसान का रंग काला हो जाता है क्योंकि वो खून जमकर स्याह हो जाता है। तो पानी जमाने के लिए भी बिजली चाहिए और वो बारीक जर्रे जो हमेशा हवा में मौलक रह जाते हैं ये बिजली के कड़के हैं जो उन्हें इकट्ठा करते हैं और फिर वो भारी होकर जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो रात की तारीफ ये है, फिर फरिश्तों ने तो तारीफ की अपने तौर पर लेकिन मजमून की गहराई में नहीं उतर सके। रात खुद जानती है कि मैं क्या चीज हूं। फरमाया जो सब रात हो गए हमदे, बिजली का हर कड़का अपने रब की हमद कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो भी फरिश्तों की तरह अच्छे कामों पर मामूर है और उसके नतीजे में बहुत से बनी नौ इंसान को फवायद हासिल हो रहे हैं। फिर इसी मजमून पर आप मजीद गौर करें तो आप हैरान हुए मालूम करके कि दुनिया की जरखेजी का बराह रास्त बिजली से ताल्लुक है। बस एक साधन है इंसान, कम इल्म इंसान तारीफ तो करता है लेकिन उसकी तारीफ में डर ज्यादा शामिल होता है, बिजली का रोक ज्यादा शामिल होता है, हकीकत का इल्म उसको नहीं होता। लेकिन बिजली खुद अपनी हकीकत जानती है, इन मानों में कि जो बिजली का कारोबार चल रहा है, इंसान जिस तरह अपने नफ्स को खुद जानता है इस तरह कारखाना कुदरत भी खुद अपने आप को जानता है, ये माना है। उसमें एक और बात दाखिल है कि हवा में जो नाइट्रोजन पाई जाती है ये नाइट्रोजन रोहिदगी के लिए बड़ी जरूरी है और जितने भी खेतों में मुख्तलिफ किस्म के कीमिया इस्तेमाल किए जाते हैं जरखेजी बढ़ाने के लिए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हों या खादें मुख्तलिफ किस्म की गलने सड़ने की विधि में पैदा होने वाली खादें हों, उन सब में जुज़्वे आज़म नाइट्रोजन होती है। अब फिजा में जो नाइट्रोजन तहरील होकर हमारे हाथों से या नबातात के हाथों से निकल चुकी होती है उसे दोबारा जमीन में लाने के लिए बिजली के कड़के जरूरी है। चुनांचे वो नाइट्रोजन वो पानी जो आसमान से बरसता है बिजली सिर्फ उस पानी को बनाने का काम नहीं दे रही होती बल्कि उसमें नाइट्रोजन तहलील करने का काम भी दे रही होती है। आसमान पर ये कारखाना भी साथ लगा हुआ है कि खाली पानी का क्या फायदा अगर गजा साथ न हो, तो आसमान से जो पानी बरसता है वो अपनी गजा भी साथ लेके आता है। तभी आपने देखा होगा कि दस पानी कुएं के दें, जो एक पानी आसमान से बरसने वाला खेत के हाल हालात खेल की हालतें बदलता है और उसमें एक नई ताजगी पैदा कर देता है, वो मुकाबला नहीं हो सकता। जमीनी पानी फायदा देता है जरूर, इसमें कोई शक नहीं, बाज जगहों के पानी जरखेज भी होते हैं, लेकिन बारिश के जरिए अगर नाइट्रोजन दोबारा जमीन को ना मिलती तो ये जमीन अब तक वीराना हो चुकी होती। इतनी ज्यादा नाइट्रोजन बिजली के कड़कों के जरिए बनती है कि बाज साइंसदानों का ख्याल है कि सारी दुनिया में जो कारखाने नाइट्रोजन बना रहे होते हैं, एक दिन में उससे कहीं ज्यादा नाइट्रोजन बिजली के कड़कों के जरिए बनती है और फिर पानी में तहरीर होकर दोबारा मिट्टी को मिलती है। तो अब देख रहे हैं ये सब्बेहुर्राद व हमदेही में कैसा एक अजीब और मजमून दाखिल हो गया। आम आदमी समझता है कि जलाने के लिए है या हलाक करने के लिए है, गौर किया तो पता चला कि जलाने और हलाक करने के लिए नहीं, रोइदगी पैदा करने के लिए और बढ़ाने के लिए है और नश्वोनुमा की खातिर है। बस इसकी हलाकत भी मायने रखती है और वो भी फायदे ही के लिए है, मगर ये एक इकोसिस्टम का मजमून है जिसका यह तफसील से बयान करना मुमकिन नहीं। लुत्फ की बात यह है कि जिस जो हिस्सा इसका जलाने का काम जलाने के काम आता है वो भी अजीमतर फवायद की खातिर है। ये तो जिंदगी को सहारा देने वाला सहारा देने का मजमून है, रबूबियत का वो मजमून जो जिंदगी पैदा होने के बाद जारी होता है। बस यू सब और रादों में देखें खुदा ताला ने क्या क्या बातें हमें दिखाई, लेकिन इसके एक ताल्लुक जिंदगी के आगाज से भी है। वो तमाम साइंसदान जिन्होंने जिंदगी की पैदाइश पर गौर किया है, और दुनिया में लाखों साइंसदान हैं जिनकी दिन रात इस बात पर वक्फ हैं, वे मुम्मा हल करने की कोशिश करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं कि जिंदगी का आगाज कैसे हुआ था। इस बात पर वो सब बार बार मुतफिक हो चुके हैं कि अगर गैर मामूली तौर पर ताकतवर आसमानी बिजलियां समुद्री पानियों पर ना गिरती तो वो जिंदगी का मादा पैदा हो ही नहीं सकता था जिससे आगे जिंदगी ने वजूद पकड़ना था। वो ईंटें नहीं बन सकती थी जिससे जिंदगी में तामीर होना था। बस यू सब्बे और राज व हमदे ही का मजमून सिर्फ मौजूदा जमाने से नहीं, आइंदा जमानों से नहीं, बल्कि इब्तदाए आफरीदे से भी है। यानी अभी जिंदगी वजूद में ही नहीं आई थी तो बिजली गोया हम पर हंस रही थी कि तुम बेवकूफों को समझा करोगे मुझे कि मैं तो जलाने और हलाक करने वाली चीज हूं। मेरी वजह से जिंदगी का आगाज हुआ है, मुझे खुदा ने इस्तेमाल किया है तुम्हें पैदा करने के लिए और कायनात में हर किस्म की जिंदगी की सूरतें पैदा करने के लिए। तो देखें अल्लाह ताला की क्या शान है। सिर्फ एक आयत के एक हिस्से पर कुछ गौर करें तो आपको खुदा ताला की कितनी सिफात दिखाई देंगी। और फिर इंसान ये बार दफा ये सोचता है कि कैसे मुमकिन है कि सूरह फातिहा में खुदा ताला की 99 सिफात का जिक्र हो। जो सब्बेहुर रादो बेहमदे ही में जिन उलूम की तरफ इशारा है, जिन सिफात हसने की तरफ इशारा है, जिनके बगैर यू सब्बेहुर रादो बेहमदे ही का मजमून पैदा ही नहीं होता, वो ही 99 से ज्यादा है। बल्कि अगर आप गौर करें तो 99,000 से भी ज्यादा दिखाई देंगी। बस ये है सूरह फातिहा, जिसको आप गौर से समझने की कोशिश करें, इस मजमून को अपने दिल पर जारी करें, इसमें डूबने की कोशिश करें, इसे कश्ती बनाएं और इसमें ज़ाते बारी ताला की सैर करें, तो ये वो सफीना है जो एक बेतनाज समंदर में हमेशा हमेशा के लिए सफर करता रहेगा और कभी आपको कोई किनारा दिखाई नहीं देगा। बस अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत जिस कौम को अता फरमा दी है सूरह फातिहा, वो बार बार ये नहीं कह सकती कि ऐ खुदा इबादत तो तूने फर्ज कर दी और 5 वक्त रोजाना के लिए फर्ज कर दी कम से कम, और हमें यह ना बताया कि इस इबादत को किस तरह लज्जत से भरें। सूरह फातिहा ने सब कुछ सिखाया हुआ है और यह तो बहुत मुख्तसर महदूद सा जिक्र है। बेशुमार ऐसी सिफात हसना हैं बेशुमार ऐसे राज हैं जो सूर्य फातिहा में खजानों की तरह दफन हैं, आप उनको पाते चले जाएं, उन पर गौर करते चले जाएं, खुदा उनको जाहिर फरमाता चला जाएगा। हम अपने गौर से नहीं पा सकते, मगर जितना दिल को पाक करते चले जाएंगे अल्लाह ताला खुद आप पर ये मजामीन जाहिर फरमाता चला जाएगा। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इस मजमून को पेश नजर रखें कि सिवाय उन लोगों के जिनको खुदा पाक कर देता है, कोई कुरान करीम के मजामीन को छू नहीं सकता। बस किसी चालाकी की जरूरत नहीं है, इंसानी जहन मुख्तलिफ किस्म के हैं, कोई ज्यादा काबिल कोई कम काबिल, कोई ज्यादा आलिम कोई कम आलिम, लेकिन सूरह फातिहा को मजमून को समझने के लिए दिल के पाक होने की जरूरत है, और दिल कुल्लियतन पाक हो नहीं सकता सिवाय इसके कि अल्लाह ताला पाक करे, और जितना पाक करे वही करे। तो कुरान करीम ने यहां यह नहीं फरमाया ला यमस्सुहु इल्ला ताहिरून कि सिर्फ पाक लोग इस किताब की मजमून को छू सकते हैं, बल्कि फरमाया ला यमस्सुहु इल्ला मुतहरून, वही लोग इसके मजमून को छू सकते हैं जिन्हें पाक किया जाता है, और पाक करने वाला खुद खुदा है। बस जितना आप सूरह फातिहा के मजमून पर गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तान इस बात पर टूटेगी कि इय्याका नाबूद व इय्याका नस्तईन, अखवाम ने खूब सैर की खूब लुत्फ उठाए, लेकिन बहुत कुछ देखना बाकी है, और जो कुछ देखा उससे फायदा उठाना बाकी है, उसे मुस्तकिलन अपने वजूद का हिस्सा बना लेना बाकी है। बस इय्याका नाबूद, हम तेरी ही इबादत करते हैं, वैया का नस्तईन, और तुझसे ही मदद चाहते हैं। फिर मुख्तलिफ नजारों के साथ ही नहीं, मुख्तलिफ औकात के साथ सूरह फातिहा का मजमून बदलता चला जाता है, और खुदा की हम मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने जाहिर होती है। फरमाया फसब्बिह बिहम्द रब्बिका क़ब्ला तुलू शम्स व क़ब्ला ग़ुरूबिहा, कि अल्लाह की हम्द उसकी पाकिजगी बयान करते हुए किया करो, क़ब्ला तुलू शम्स, सूरज निकलने से पहले और सूरज ग़ुरूब होने से पहले, ये दो मुख्तलिफ बदलती हुई हालतें हैं। इन सब का ताल्लुक रबूबियत के साथ है। सब्बे बेहमदे रब्बे का फरमाया, इस मजमून को भी साइंसदानों ने जितना खंगाला है उतना ही उसके पीछे उनको अजीम मार्फतों के खजाने दिखाई देते हैं। खुलासा कलाम यह है कि सूरज का निकलना और सूरज का गुरूब होना, और वो निजाम जिसके साथ सूरज के निकलने और गुरूब होने का ताल्लुक है, ये जिंदगी की सपोर्ट के लिए, जिंदगी को यहां कायम रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर ये सूरज का निकलना और गुरूब होना ना होता तो इस कुर्रे अर्ज पर जिंदगी पैदा हो ही नहीं सकती थी, जिंदगी पैदा हो भी जाती तो मर जाती, और उसके बाकी रहने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब ये जो फरमाया सब्बे बेहमदे रब्बे का क़ब्ला तुलू शम्स व क़ब्ला ग़ुरूबिहा, तुलू शम्स व क़ब्ला ग़ुरूबिहा, इसमें गौर करने की खिड़कियां हमारे सामने खोल दी। फरमाया कि मौसमों के बदलने पर गौर करो, दिन और रात के बदलने पर गौर करो, इनकी बदलती हुई नस्बतों पर गौर करो, और यह मालूम करो कि सूरज निकलने से पहले पहले वो क्या तग़य्युरात बरपा हो रहे होते हैं जो रबूबियत के जलवे तुम तक पहुंचाने में मददगार होते हैं, या जिनके जरिए रबूबियत इस दुनिया में जलवागर होती है, और सूरज गुरूब होने से पहले पहले कौन से तग़य्युरात लाजिम होते हैं जो सूरज को गुरूब करने पर मजबूर करते हैं, वरना जिंदगी इस दुनिया में बाकी न रह सकती और रबूबियत का निजाम गरम बरम हो जाता। बस सूरज के तुलू से भी रबूबियत का ताल्लुक है, सूरज के गुरूब से भी रबूबियत का ताल्लुक है, और वक्त के बदलने के साथ रबूबियत मुख्तलिफ रंग में जलवागर है। अब जैसा कि मैंने इशारतन आपको बता दिया है, साइंसदानों ने इस मसले पर भी गौर किया है, और तमाम दुनिया के साइंसदान जो इस मजमून से ताल्लुक रखते हैं मुत्तफिक हैं इस बात पर कि मौसमों के अदल ने बदलने और दिन के अदल ने बदलने का जिंदगी के साथ इतना गहरा रिश्ता है और जिंदगी के कायम रहने और इसकी तरक्की के साथ इतना गहरा रिश्ता है कि इसमें अगर आप थोड़ा सा तगय्युर और तबदुल भी कर दें तो ये रिश्ते टूट जाए। और ये कुर्रा अर्ज जिस पर हम बसते हैं ये जिंदगी के बसाने के लायक न रहे। बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में उन तमाम सिफात हसना का भी जिक्र आ गया जिनका मौसमों के तगय्युर तबदुल से ताल्लुक है और मौसमों के तगय्युर तबदुल के साथ बहुत गहरे मज़ामीन वाबस्ता हैं, बेशुमार सिफात का इससे ताल्लुक है। तो अपने इल्म के मुताबिक हम रबूबियत के नए मज़ामीन पर इत्तला पा सकते हैं और जितना हम इल्म बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हम खुदा ताला की दुनिया में खुदा ताला की सैर करेंगे। सीरू फिल अर्द का जो मज़मून है उसका यही मतलब है, सैर फिल्ला जो सूफियों की इस्तिलाह है उसका ये मतलब है कि अल्लाह की जात में सैर करो। बाहर की सैर तो एक सैर होती ही है लेकिन उस सैर का फायदा कोई नहीं। सीरू फिल अर्द का कोई फायदा नहीं अगर सैर फिल्ला के लायक इंसान ना बन सके। बस दुनिया की सैर करें लेकिन मजे खुदा के उठाएं। अगर दुनिया की सैर करके दुनिया ही के मजे उठाकर रह जाएंगे तो आपकी सारी जिंदगी बेकार जाएगी। ये वो मज़मून है जो सूरह फातिहा हमें सिखाती है और जैसा कि मैंने बयान किया है अपनी नमाज में आप सूरह फातिहा के इस पहले जूज पर ही गौर करना शुरू करें तो सारी जिंदगी की नमाजें लज्जत से भर सकती हैं और आप इस पर इस मज़मून पर अबूर नहीं हासिल कर सकते। ये मज़मून हमेशा आप पर गालिब रहेगा। इसका दूसरा हिस्सा चूंकि वक्त ज्यादा हो गया इंशाल्लाह आइंदा खुद में बयान करूंगा। हाँ खुदबा